हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह हजारों कहानियां हैं आपके लिए। काफी देर तक दौड़ते हुए वो दोनों वहां से काफी दूर आ गए और पीछे मुड़कर चंद्राकर ने देखा तो उनके पीछे कोई भी नहीं आ रहा था। तो एक पेड़ के तने पर हाथ रखते हुए चंद्रिका ने कहा, ठहर जाओ, पता नहीं हम दोनों किस रास्ते पर जा रहे हैं, एक पल के लिए रुक कर ये तो देखो। चंद्रिका की बात सुनकर वीरेश भी रुक गया, क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा है कि वो रास्ता भटक चुका है और नहीं पता कि किस दिशा में वो दोनों आगे भागते जा रहे हैं। अगर रुकने की वजह से हम लोग दोबारा पकड़े गए तो फिर गलती किसकी हुई होगी। रुककर वीरेश चंद्रिका की तरफ देखते हुए पूछा, तो चंद्रिका ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन गलत दिशा में आगे बढ़ना भी तो ठीक नहीं है। चंद्रिका वहां पत्थर पर बैठ गई और बहुत ही ज्यादा मायूस लग रही। उसकी आंखों में आंसू हैं और वीरेश ने उसे इस तरह से देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसने चिल्लाकर उससे बोला इसी वजह से चंद्रिका रो रही है। तो आगे आते हुए उसने कहा, देखो मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बस पूछ रहा था, मुझे लगा वो लोग अभी भी हमारे पीछे आ सकते हैं। नहीं, मैं उसे वजह से नहीं रो रही, मुझे माँ की याद आ रही है, रानी माँ, उन्होंने बताया कि उनकी हालत खराब है हमारी वजह से, और राजकुमार उनके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। तुम कैसे भी राजकुमारी वसुंधरा में से किसी का पता लगाओ, बस अब बहुत हो गया ये भागा दौड़ी और ढूंढने का खेल। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा था वहाँ पर ही कोई ना कोई होना था। वहाँ पर उसे खंडहर में हमें सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा महसूस हो रही थी, और हमसे कुछ देर पहले तक वहाँ काफी सारे लोग मौजूद भी थे, शायद शाम के वक्त तक जब वहाँ पर आग लगी हुई थी तब। लेकिन पता नहीं कैसे हमारे आने से पहले एकदम ही सारे लोग गायब हो गए और वो सैनिक वहाँ पर पहुँच गए। इतना बोलते हुए वीरेश भी अपना सिर पकड़कर वहाँ पर बैठ गया। तभी चंद्रिका को एकदम से कुछ ध्यान आया और उसने वीरेश की तरफ देखते हुए पूछा, तुम जैसे नकारात्मक शक्तियों का पता लगा सकते हो क्या, वैसे ही तुम वसुंधरा का पता नहीं लगा सकते? रुको एक मिनट, मेरे पास राजकुमारी की अंगूठी है। इतना बोलते हुए वसुंधरा ने अपनी उंगली में से एक अंगूठी उतारकर वीरेश को दिखाई। वीरेश उसे अंगूठी की तरफ ध्यान से देखने लगा और थोड़ी देर तक उसने कुछ भी नहीं बोला। पत्थरों के बीच बनी हुई एक बहुत ही संकरी गुफा, जहां पर एकदम नाम मात्र की ही रोशनी है, विक्रांत ने वहां पर एक छोटी सी जगह पर वसुंधरा को रखा हुआ है, जहां पर वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ खड़ी हो पा रही है। इसके अलावा उसके इधर उधर जाने की और कोई भी जगह वहां पर नहीं है। वसुंधरा ने खड़े होकर अपने दूसरी तरफ के पत्थर को जैसे ही हाथ लगाया, उसके हाथ को एक तेज झटका लगा और इतनी दूर का हाथ एकदम काला पड़ गया। वसुंधरा ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए बहुत ही तेज दर्द की वजह से, और मुंह से दर्द भरी चीख भी निकल गई। आह, हमारा हाथ, ये सब क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? इससे अच्छा तो तुम हमें जान से ही मार दो, इस तरह से बांध कर क्यों रखा हुआ है हमें? घुटन हो रही है, हमें नहीं रहना यहाँ, हमें बाहर निकलो यहाँ से। वसुंधरा अपने आप में ही सिमटकर एकदम बीच में आकर खड़ी होते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जो कि दर्द की वजह से हैं। इसके अलावा वो काफी परेशान भी है, क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा, नहीं उसे विक्रांत से बचने का। इसके अलावा विक्रांत उसकी बात का कोई जवाब भी नहीं देता है, नहीं उससे कुछ बातचीत करता है, बस उसे टाइम से खाने पीने को देता है और जबरदस्ती खिलाए, कभी सम्मोहित करके तो कभी अपने जादू के बल पर, जिससे कि वो 15 दिनों तक जिंदा रह सके। विक्रांत को वसुंधरा की शक्तियां खुद में लेनी है, जिसके लिए उसका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है, और विक्रांत को ना चाहते हुए भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है। विक्रांत जैसे ही खाने की प्लेट उसके आगे लेकर आता है, वैसे ही वसुंधरा उस प्लेट पर हाथ मारकर सारे खाने को नीचे गिरा देती है, और वहां पत्थरों से भरी हुई जमीन पर प्लेट के गिरते ही एक तेज आवाज हुई। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, नहीं खाऊंगी मैं ये खाना, बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तुम मुझे जान से मार दो और मर जाने दो मुझे, आखिर करना क्या चाहते हो तुम, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर, बताओ पहले मुझे, जब कुछ जानना है आखिर ये मुझसे जुड़ा हुआ है तो। तुम अब मेरा दिमाग खराब कर रही हो, मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता, लेकिन लगता है तो मुझे सच में मजबूर कर दोगी। इतना बोलते हुए आगे जाकर विक्रांत ने कसकर वसुंधरा की गर्दन को पकड़ लिया और उसे गर्दन से पकड़ते हुए हवा में उठा दिया, और विक्रांत की आंखें इस वक्त एकदम आग की तरह जल रही थी, क्योंकि वो भी गुस्से में था, और उसी तरह गुस्से से वो वसुंधरा को ऊपर से नीचे तक देख रहा है। वसुंधरा को अपनी गर्दन पर विक्रांत की उंगलियां कसती हुई महसूस हुई तो उसे तेज खांसी आने लगी। 10 दिन, बस 10 दिन और किसी तरह झेलना है। मेरे लिए इन 10 दोनों को सबसे मुश्किल दिन मत बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम कर दूंगा। तुम अभी जानती नहीं हो विक्रांत को। नज़र उठाकर ऊपर हवा में लटकी हुई वसुंधरा की तरफ उसी तरह गुस्से से देखते हुए विक्रांत बोला। लेकिन वसुंधरा अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। उसकी गर्दन पर जो विक्रांत का हाथ है, उसकी वजह से वसुंधरा को ऐसा लग रहा है कि बस अभी उसका दम निकल जाएगा। लेकिन वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही। उसे लग रहा है कि मौत इस पल उसके लिए किसी वरदान की तरह है। अगर वो मर जाए तो इन सबसे उसकी जान छूट जाएगी, इसलिए उसकी आंखों में एकदम तसल्ली के भाव नजर आ रहे हैं। उसने एक बार भी विक्रांत से खुद को छोड़ने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसके मुझे शायद आवाज भी नहीं निकल रही है, और अगर निकलती फिर भी वो कभी भी उसे अपनी जान के लिए भीख नहीं मांगती, क्योंकि उसकी कैद में रहने से वसुंधरा को मौत ज्यादा अच्छी लग रही है। एकदम आंखें भारी होते हुए वसुंधरा की आंखें धीरे धीरे से बंद होने लगी, और विक्रांत के हाथ के नाखून उसकी गर्दन में गड़ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर खून की कुछ बूंदें भी नजर आने लगी। क्या आपने गुस्से में पागल होकर विक्रांत ले लेगा वसुंधरा की जान? और क्या वीरेश चंद्रिका समय रहते पहुंच पाएंगे वसुंधरा तक, या फिर राजा के सैनिक उन दोनों को वापस महल लेकर चले जाएंगे? कहाँ है राजकुमार समर?